शरीर के और मन के धर्म को छोड़ करके
রূপ গোস্বামী হ্যাজ গিভেন 18 সূত্র সূত্র ইউ নো হি হ্যাজ গিভেন এভরিথিং ইন হিজ পদ্মাবলী অ্যান্ড Stomala. What was his idea in Bhakti Swami Sindhu and Ujjwal Bilmani? We cannot fix what was his own idea, what was his own sarup, how he wanted to serve, how he used to serve. We cannot define.
Ascertain. We cannot
find out.
Discover.
It is very hard because as general he has written these books. He has also written Vidabh Madhav and but it is for general. But what was his own idea? How he used to serve her? It is written only in Stavara. Sathoyam navekcha punarah mayamana dhanaya. সুবল সখা বারং বারয় গিরাম ইট ইজ ইন উৎকল উৎকল্লিকা বল্লরী হোয়াট ইজ মিনিং অফ উৎকল্লিকা বল্লরী উৎকল্লিকা
বল্লরী
হোয়াট ইজ দ্য মিনিং হ্যাঁ ফেন এনিথিং উই ওয়ান্ট টু টেক এনিথিং বাট উই রিসিভ মোর দ্যান পার্ট উই ওয়ান্টেড দেন আওয়ার হার্ট বিকমস
So much joy.
And that joy cannot be kept in this little then it comes out. No? That is called Utkallika. Ballari. Ballimane Lata.
Kripa.
In which all kinds of very sweet fruits are. When we take this, what? So many kinds of modes are fruits there. Srimati ordering Rupmanjari. Oh Rupmanjari, come on. You should stand on by the door of Kunj. You see who is coming? Is it Krishna? No, he is not Krishna. He is Satha. Satha means you know?
Cheater.
He is coming? Go at once and stop that. What cheater? He should not come. No, he, it seems that she, any lady gopi is coming. No. She is not lady. Himself Krishna in the shape of gopis is coming on. This shape has been made by Subal, Subal Sakha. I don't want to meet. Go and post Krishna there. He is so dhurta. So he went on the door and stood up and Krishna came in the shape of any gopi and he was what?
Praying.
That may I go to Srimati to serve her? I want to be a sakhi of your sakhi. He began to smile. Yeah, I hear. No knew who are you. You are Satadhota. Himself Shyam. Today my Sakhi is so angry with you. You cannot go. And Krishna began to like this. May I be permitted? I will serve her. I know some skills and something that when I will touch his all sorrows, sufferings and all kinds of pain will go out. I know some skills. I have so much, so beautiful garlands. I will give it within my one hand. And I will serve in every issue. She began to more smile and smile. By one eye sing to Srimati and by one eye to him. Both eyes. No? At a time. This is called Utkallika Ballari. So I want to serve Srimati Radhika like this. This is his own swarup. If anyone follows this siddhant, they are called Rupanga. Not all. Following the Bhakti Rasami Sindhu and Ujjalin Mani, anyone cannot be Rupanga. Sarup Tamodar is not Rupanga. He is Vishakha. Sarup Damodar is Lalita. And Rai Ramanindi is? They are superior. They are Priya Narvashakti. But here, Rupmanjari and all others are superintendent in his house, Arkul. If Lalita will come, she will take order of Rupmanjari. Then she will come. So this service is so high. He has done by so many slokas there, so many people. At first you should try to give up your all kinds of honors, all rogues, and then try to go para para sadek. Para para jaldi para.
तस्मै गुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाप्रसन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्ये गौरवस्तुते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाने कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय
तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम चरणं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम् आददानस्त्रीणं दन्तैरीदं जाचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपदाम्भोजधूलि स्यात् जन्मनि जन्म मैं परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अपने हृदय की आंतरिक श्रद्धा पुष्पांजलि ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे परम पूजनीय गौड़ीय वैष्णव के आचार्य विद्वत अन्य रसिक ये वैष्णव हम लोगों के सामने राधारमण के विशेष सेवाधिकारी श्री श्री गौर कृष्ण गोस्वामी जी हमारे गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांतों के मर्मज्ञ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के परंपरा में शिला अच्युत भट्ट गोस्वामी जी हमारे गौड़ीय वैष्णव के ये मर्मज्ञ हमारे लक्ष्मी नारायण जी ये सब पूज्य वैष्णव लोग हैं। अभी झूलन का उत्सव सर्वत्र चल रहा है। तिरुभाव तिथि थी, हमारी इच्छा ये थी कि ब्रज के ये रसिक विद्वान लोग उनके मुख से हम लोग कुछ रूप गोस्वामी की गुणगाथा उनका चरित्र वैशिष्ट उनके उपदेश और उनके भक्ति रस के विचार इत्यादि को श्रवण करें। इसलिए हम लोगों ने कुछ निवेदन किया। आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच में ऐसे ऐसे मूर्धन्य विद्वान लोग रसिक लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग इनसे सुनने की कुछ चेष्टा करेंगे, हृदय में धारण करने की चेष्टा करेंगे। मैं सबसे पहले श्रील रूप गोस्वामी के वैशिष्ट्य के संबंध में संक्षिप्त में श्रील श्रीमान शुभानंद ब्रह्मचारी जी को कहूँगा कि ये कुछ अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए उनके चरणों में रस भावना के संबंध में बहुत कुछ समझ। हमारी ये सभा रूप गोस्वामी की बिना तिथि का जो उत्सव था वो हम लोग सफल मानते हैं। अब हम श्री गोपकिशोर गोस्वामी जी से निवेदन करता हूँ कि श्री रूप गोस्वामी की और जो विशेषताएँ हैं ये विशेषताओं के संबंध में हमारे लक्ष्मी नारायण जी ने ये बतलाया। एक दो दिन क्या
वर्षों और हजारों जन्मों तक भी रूप गोस्वामी की विशेषताओं का वर्णन किया जाए तो आर पार संभव नहीं है। बहुत संक्षेप में इनकी भी इच्छा थी बहुत अधिक वर्णन करने की, सूत्र रूप में थोड़े थोड़े से ही इन्होंने वर्णन किया। तो जो विशेषताएँ जो रह गई हैं उनके जो बचे हुए हैं उसके संबंध में हमारे गौर कृष्ण गोस्वामी जी आप लोगों को श्रील रूप गोस्वामी का यह मधुर रस परिवेषण करेंगे, उनके से मैं यही निवेदन करता हूँ। हम लोगों ने श्रील रूप गोस्वामी की विरह तिथि पालन करने के लिए आयोजित की थी, सर्वांश रूप में वह सफल हुआ। मैं यही चाहता था कि ब्रजवासी भक्तों के मुख से जो यथार्थ में रूपांग वैष्णव हैं उनके मुख से हम कुछ श्रील रूप गोस्वामी के महात्म को उनके स्थापित विचारों हम लोग कुछ स्पर्श कर सकें। इन रसिक विद्वानों ने जैसे सुंदर विवेचन श्रील रूप गोस्वामी के चरित्र और उनकी शिक्षाओं के संबंध में किए, सचमुच में यह अपूर्व है। मैं ऋणी हूँ इन लोगों का। मैं अब क्या कहूँ, सब कुछ तो इन लोगों ने बतला दिया, बहुत सूक्ष्म विवेचन किया, मुझे बहुत ही आनंद हुआ। मैं सोचता हूँ कि समस्त श्रोताओं को सुनकर के बहुत ही आनंद हुआ होगा। तभी इन चार विनों में से मैं दो एक कुछ चर्बित को फिर से चबा करके आप लोगों के सामने उपस्थित करता हूँ। बहुत सुंदर सुंदर विचार इन लोगों ने दिए, इन्होंने हमारे गोस्वामी जी ने बतलाया रूपानुग वैष्णव किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग रागानुगा समझें, इसके संबंध में हमारे भट्ट गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया। रागात्मिका का जो अनुसरण करते हैं इस जगत में साधन की अवस्था में वो रागानुगा है। श्री रूप गोस्वामी ने भक्त गोस्वामी सिंधु और विशेष करके जो अवशिष्ट रह गया मधुर रस का विवेचन वो ज्वलनीय ग्रंथ में किया, और उसके उदाहरण उन्होंने देने के लिए कोई शास्त्र जब नहीं मिला तो उन्होंने ललित माधव विवर्धक माधव स्वयं रचना करके और उससे उन प्रमाणों की कमी पूरी की, क्योंकि वैसा कोई शास्त्र में कहीं लिखा ही नहीं है। अभी जो उन्होंने द्वारका लीला की महर्षियों को बतलाया जो ब्रज की जो किशोरी गोपियाँ थीं और वही यौवन अवस्था में वो इन गोपियों की वो प्रकाश हैं, अंश हैं, वो गोपियाँ अंशनी हैं, और कैसे उस लीला का समावेश करके सुंदर भावों को प्रकाश किया। तो मैं रागानुगा के संबंध में कह रहा था, रूप गोस्वामी ने जो भक्तृस्वामी सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि लिखा ये एक साधारण रस ग्रंथ है, इसमें सब प्रकार के रसों का विवेचन हुआ है। उसमें जिस साधक का जिस भाव के प्रति लोभ उत्पन्न हुआ और उसके अनुगत्य में जो ब्रज में जो उन्होंने बतलाया जो उनके परिकर हैं, नित्य सिद्ध परिकर हैं, उनके भावों के प्रति लोभ उत्पन्न हुआ और उसको ग्रहण करके चले आ रहे हैं और भजन कर रहे हैं, अभी साधन कर रहे हैं, उनको रागानुगा वैष्णव कहते हैं। क्योंकि यह राग उन्हीं के हृदय में वो मौजूद है रागात्मिका, जैसे इन्होंने बतलाया गोपियों में मधुर रस मधुर रति, जसोदानंद में बात्सल्य रति, सखाओं में सख्य रति, दासियों में दास्य रति, यह है उसके प्रति जिसका जिसको लोभ उत्पन्न हुआ उसके अनुसार में उनकी श्रद्धा से ही चली, साधु संग में जो श्रद्धा हुई लोभमयी अथवा वैधि को यहाँ पर छोड़ दीजिए, लोभमयी उसके पत्ते का ऊपर का भाग रुखड़ा और भीतर का भाव अत्यंत चिक्कन मधुर स्निग्ध, ये स्निग्ध भाव वाला ही यह रागानुगा, यह श्रद्धा लोभमयी से यहीं से उसकी निष्ठा रुचि आसक्ति भाव ही यह ब्रजभाव का अनुसरण करता है, यह ऐश्वर्य भक्ति वैकुंठ भक्ति की तरफ में नहीं ले जाती। रूप गोस्वामी ने इसका बहुत ही सुंदर विवेचन दिया। तो इसको अनुसरण करके जो चलते हैं
उनको रागानुगा कहते हैं। इन रागानुगा में विशेष भावों, रूप गोस्वामी का जो अपना भाव है, अपना क्या भाव है, ये तो साधारण रूप में उज्जवल नीलमणि इत्यादि में दिया, जिसका विवेचन इन रसिक विद्वानों ने किया। रूप गोस्वामी का अपना भाव क्या है, ये भाव को लेने के लिए स्तवमाला का जिन्होंने बतलाया, उसमें प्रवेश करना पड़ेगा। ये रूप गोस्वामी ने अपने भावों को वहाँ पर प्रकाश किया। जैसे एक श्लोक में, मैं तो पंडित हूँ नहीं, हमको संस्कृत का सब ही नहीं आता, तभी मैं सुनाया, जो सठोयम सठन नावेक्ष मया पुनरह मान धनया। रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, ओ ये सुबल सखा ये आ रहा है, मया मान धनया, मैं मान में यहाँ हूँ, आज मैं कृष्ण का कसरे मिलना नहीं चाहती। रूप मंजरी को आदेश दे रहे हैं, रूप मंजरी प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे यह कब हमारे अंदर में आए भाव, कह रहे हैं सठो अयम, यह सठ आ रहा है, यह धूर्त आ रहा है। कौन वो धूर्त है, ये कृष्ण है। कैसे आ रहे हैं, सखी का वेश बना लिया है, ऐसे वहाँ पर प्रवेश उसमें नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहचान लेने के बाद में उसे बाहर कर देंगे। इसलिए पहले ही राधा जी उनको कह रही हैं, किसको, रूप मंजरी को, उसी को रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, यह सठ आ रहा है। सुबल ने उसको स्त्री वेश में सजा दिया है, आज मैं काले किसी चीज को मैं देखना नहीं चाहती, यदि बस चलता तो आँख की पुतलिया में जो काली माँ है इसको भी आज ढक देती, केशों को तो फूलों से ढक दिया, आज खज्जल नहीं लगाया, भ्रमरों को यहाँ पर प्रवेश करना निषेध कर दिया, और कह रही हैं जैसे इसको आने मत देना, ये स्त्री वेश में आ रहा है। सचमुच में रूप गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं, ओहो कब मेरा आया ऐसा सौभाग्य, मैं कुंज के द्वार पर खड़ी होकर और कृष्ण को मैं वहां से भूसने नहीं देंगे। वो खड़े होकर के उनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, अरे देखो तो जयदेव गोस्वामी उनके पहले जो थे, वो उनकी भावना ऐसी थी, राष्ट्र के बाद में, बासंती राज के बाद में कृष्ण के चरणों में, राधा जी के चरणों में कृष्ण अपना सिर झुका देना चाहते हैं, किंतु इस विषय को लिखने का साहस नहीं हुआ। क्यों, पर ब्रह्म परमेश्वर समस्त रसों के आधार, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर, सबके आदि और स्वयं अनादि, ये कृष्ण अपनी शक्ति के चरणों में गिरेंगे, ये कैसे संभव है। हाथ कांपने लगा, कलम छूट गई, गिर गई, पुस्तक तो को बांध दिया, गंगा स्नान करने के लिए ही गया। रास्ते भर यही चिंता कर रहे हैं, कैसे ये राधा जी के चरणों में ये कैसे ये गिरेंगे, ये तो संभव नहीं लिख सके। और इतने में कृष्ण उनकी मनोभावना को जान करके, इसका हाथ कांप रहा है, नहीं लिख रहा है, स्वयं आकर के स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पदपल्लम दारम, अपने हाथों से उसमें लिख दिया। जयदेव गोस्वामी नहीं लिख सके, और वो किसके लिए, राधा जी के चरणों में नहीं गिरा सकते। और इधर में रूप गोस्वामी का विचार देखिए, उससे कितना ऊंचा, और ये शंक चित्त से उसे लिख रहे हैं, जैसे राधा जी के, राधा जी की तो बात ही क्या, कृष्ण उनकी किंकरियों के चरणों में बार बार पुनः पुनः प्रार्थना करते हुए गिर रहे हैं, और उनको वो मुस्कुराते हुए एक आंख से राधा जी की तरफ में देख रही हैं और दूसरी आंख से कृष्ण की तरफ में देख रही हैं, और उनको आने नहीं दे रही, और कृष्ण हाथ जोड़ करके काचू माचू करते हुए बार बार पुनः पुनः निवेदन करते हैं। ये रूप गोस्वामी की महत्ता है, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा शक्ति जो प्रयाग में उन्होंने शक्ति संचरित की, इसका यह फल है। जब वो कन्हैया नाटशाला में मिले, ये तो नरलीला जैसे महाप्रभु कर रहे हैं, जैसे गोस्वामी जी ने कहा, बहुत ही सुंदर भाव कहा, यदि ब्रजरस को यदि पाना है, लौकिक सद्बंधुवत भाव कृष्ण में आना चाहिए, बिना इसके ब्रजरस में हम प्रवेश नहीं कर सकते, यही वहां पर प्रहरी है, इन्होंने बतलाया। सचमुच में जब तक कृष्ण के प्रति, गोपियों के प्रति लौकिक सद्बंधु का भाव नहीं उत्पन्न होगा, हम ब्रजरस में कदापि नहीं प्रवेश कर सकते हैं। तो ये रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर रूप से विवेचन करके दिखलाया। तो ये रूप गोस्वामी एक ही जगह नहीं, उत्कल का बल्लरी में देखिए, प्रारंभ से लेकर के अंत तक, यदि ये देखना है तो चलो देखो वहाँ निकुंज रहस्य स्तव में, देखो कैसे अद्भुत अद्भुत
प्रथम मिलोन भाषता श्वास वाचो इत्यादि में कितना सुंदर गजब का उन्होंने ये कहते हैं न उनके श्लोकों में ऐसे झंकार है सचमुच में उस झंकार में रूप गोस्वामी के श्लोकों में जो झंकार हैं उसको कैल भी वहाँ पर माखा जाती है भौरे भी झंकृत में उनका उनका उतना झंकार नहीं ये रूप गोस्वामी के इन कवित्वों में अपराकित रस का झंकार वहाँ पर निकलता है ऐसे रूप गोस्वामी जी हैं जरा देखिए तो चाटू पुष्पांजलि उठा करके जरा देखिए तो कैसे कुछ सुंदर सुंदर भाव जहाँ पर सनातन गोस्वामी उनके गुरु होने पर भी रूप गोस्वामी के थोड़ा सा वो भी भ्रम में पड़ गए भ्रम में नहीं पड़ गए हम लोगों को दिखला रहे हैं रूप गोस्वामी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं अरे ये तुमने ऐसी कल्पना की क्यों की उपमा क्यों की दी ऐसी अरे नागिन की उपमा उनकी बेणी से उपमा दी नागन तो विषधर होती है और राधा जी के इन केसों को तुमने वेणी को तुमने नागिन से उपमा दी ये उचित नहीं जान पड़ता प्रभु मैंने मेरी गलती हो गई अब क्षमा करके इसका सुधार कर दीजिए चिंता करने लगा अच्छा तो मैं पीछे इसका देखूंगा सनातन गोस्वामी विचार करते हुए चले खुजलाते हुए सिर उनके गुरु हैं राधा कुंड के उस तरफ में जहाँ पर कदम्ब कानून एक कदम्ब का पेड़ जिसमें राधा जी इत्यादि सखियाँ झूला नित्य झूला झूलती हैं ये झूले का ही दिन है झूल रही हैं सनातन गोस्वामी ने स्पष्ट रूप में देखा सुंदर सुंदर किशोरियाँ ज्योति ज्योतियाँ वहाँ पर आठ दस खड़ी हैं और बीच में एक गौरी सी किशोरी बीच में है उसको ये झूला रही हैं और उसके केस पर ना जाने बेणी पर मानो नागिन नीचे से लहरा रही हो निकल करके सनातन गोस्वामी डर के मारे वहाँ से चले अरे लाली 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 कहते जे वहाँ पर पहुँचे देखा जिसे दृश्य अंतर्ध्यान हो गया देखा न लाली है और न कोई झूला है न कुछ है ओहो ये श्रीमती जी हमारा संदेह दूर करने के लिए ही कि रूप मंजरी उनकी खास कमरे की हैं इसलिए उनका वचन कदापि झूठा नहीं हो सकता है सचमुच इस चीज को दिखलाने के लिए ही उनकी उपमान जो बेणी इसके उपमा जो नागिन से है वो ठीक है सठीक बस लौट करके आए बोले जरूर तुमने जो दिखा इसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं ये सब रूप गोस्वामी के अपने भाव हैं इसी को व्यक्त किया है हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ने जिसका ये श्लोक बतलाया श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार्पित मस्तिकाया हा मोदतः कनक गौर पदार बिंदम संवाहनानि सनकैस तब किं करिष्ये ये रूप गोस्वामी के विचार इसलिए रूप गोस्वामी का यह परकिया भाव के अंतर्गत में कमात्मिका भक्ति से भी थोड़ा सा अलग से रूप ललिता विशाखा इत्यादि स्वरूप दामोदर इत्यादि ये सब हैं कमात्मिका भक्ति के मूल ये पुरुष हैं ये मूल आधार हैं और रूपमंजरी इत्यादि क्या है तत्त्व भाव इच्छात्मिका उनको मिलन कराने में ही इनको आनंद आता है इनमें तनिक भी काम की काम तो परिपूर्ण रूप में है किंतु राधा जी के मिलन में उनको काम की पूर्ति अपने आप हो जाता है जिसको गौर कुछ हमारे गोस्वामी जी ने कहा अनर्पित चरिंग चिरात करुण अवतीर्ण कलऊ समर्पय तुम उन्नतज उन्नतोज्वल रसांग स्वभक्ति श्रियम उन्नत उज्ज्वल रस देने के लिए महाप्रभु नहीं आए उसका अधिकारी कोई नहीं ये तो राधा जी का एक चेटी अपना भाव है जो महामादन मोदन इत्यादि के भाव हैं उन्नत रसांग श्री भक्ति श्रियम उन्नत उज्ज्वल रस की जो शोभा है शोभा माने क्या एक लता है उसमें पत्ते हैं पुष्प लगे हुए हैं उसमें मंजरी लगी हुई है जब हवा का झोंका आता है तो यदि उसमें मंजरी न हो फूल न हो पत्ते न हो तो उसकी कोई शोभा नहीं ये शोभा स्वरूप ये रूप मंजरी इत्यादि हैं इनके भावों को देने के लिए उन्नत उज्ज्वल रस का अतः तो राधा जी के भावों का जो जो अत्यंत श्री है शोभा है उसको देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए रूप गोस्वामी ने इसी जगत को यही दिया है इसलिए हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय क्या विश्व का समस्त संप्रदाय हमारे रूप गोस्वामी का ऋणी है पारकीय भाव को देख करके पहले रूप गोस्वामी के समय में हमारे गोस्वामी जी ने बतलाया बहुत सी समस्याएं खड़ी हो गई समस्त संप्रदायों के लोग रामानुज संप्रदाय के लोग मध्य संप्रदाय के लोग दूसरे दूसरे संप्रदाय के लोग यहाँ तक कि हम लोगों में भी रूप गोस्वामी के अनुगत अरे गोपाल भट्ट गोस्वामी के अनुगत नाम नहीं लेंगे उनके संप्रदाय के लोग और दूसरे लोग हैं वो लोग पारकीय भाव को नहीं मानते वो सब समय नित्य मिलन, कुंज में नित्य मिलन, रस को क्या समझेंगे। यदि रूप गोस्वामी का ये सब ग्रंथ पढ़ें तो वो रूप गोस्वामी की महिमा समझेंगे। जंकली रूप शरीर न धारत तंग ब्रजरस प्रेम कोठरी का कपाट कौन उघार। यदि रूप गोस्वामी नहीं होते तो ये जो महाप्रेम का जो कोठरी, महाप्रेम की जो कोठरी है जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण रसों का भंडार बना दिए हैं, महाप्रभु आने पर भी ये कोठरी का दरवाजा बंद था। क्यों? महाप्रभु के उन उत्तम भावों को जगत में ग्रहण करने वाले बहुत कम पात्र थे। महाप्रभु जी की करुणा का अवदान इन्होंने वर्णन किया इन लोगों ने। किंतु यदि रूप गोस्वामी नहीं आते तो महाप्रभु कौन है, महाप्रभु का विचार क्या है, पारकीय भाव क्या है, राधा जी का मान क्या है, विप्रलंब भाव क्या है, संभोग भाव क्या है, जगत के लोग नहीं जानते। अरे वो तो जानना बहुत, वृंदावन ही क्या है वो नहीं समझते। आराध्य हो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचित उपासना बजुबद भर्गे न जा कल्पिता, श्रीमद भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमापमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम, हम कहते हैं कि रूप गोस्वामी मतम इदम तत्राद्रोणा पर। ये जब रूप गोस्वामी नहीं आते हम चैतन्य महाप्रभु की कोई भी महिमा नहीं स्पर्श कर सकते थे, न प्रेम क्या चीज है नहीं समझ सकते थे, पारकी इत्यादि भावों की, और उसमें भी कामात्मिका और ये सब का विवेचन कितना सुंदर रूप में किया। रूप गोस्वामी के जितने भी श्लोक हैं ये पारिभाषिक शब्द समझिए, जैसे श्रीमद् भागवत में है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रार व्याकुल अंगलोकम मृणयंती युगे युगे। ये पारिभाषिक कृष्ण स्वयं ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर हैं, वो अखिल श्याम सिंधु हैं, ये श्रीमद् भागवत में ये बतला है। वैसे रूप गोस्वामी का सब चीज की परिभाषा देखो, जय भक्ति की परिभाषा लिखी, अन्न अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मानाथ आदि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। इसको सुन करके सभी लोग, आज तक भक्ति के संबंध में जितने पारिभाषिक श्लोक और मान्यताएं हैं सबको क्रोड़ीभूत करके रूप गोस्वामी का यह श्लोक है। एक स्वर से सभी को बाध्य होना होगा इसको मानने के लिए, सा परानुरक्ति ईश्वरे शांडिल्य सूत्र में दिया गया। नारद जी ने परानुरक्ति ईश्वर ही बतलाया। हमारे श्रीमद् भागवत में निर्गुणस्य ही भाग, निर्गुणस्य ही लक्षण जो ही भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदायतम अहेतुक्य अव्यवहिता जा भक्ति पुरुषत्य में इत्यादि में लिखा। किंतु रूप गोस्वामी ने ऐसा सुंदर महाप्रभु के भावों को, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने भावों की स्फूर्ति सब शक्ति संचार के माध्यम से उनको की थी, ये तो कहा जा रहा है, कहते हैं, हमको मालूम होता है ये भी कहना उपयुक्त नहीं, ये महाप्रभु जी ने उन्हें शक्ति संचार किया। अरे यदि वो रूप मंजरी हैं और पहले से ही राधा जी की शक्ति उनमें संचरित है, उनमें ये लोक शिक्षा के लिए ये कहा गया, हमारे हमारा कोई अपराध न हो जाए, किंतु हमको ऐसा ही मालूम है। उन वो खास कमरे की हैं इसलिए ये लोगों को दिख रहा है कि बिना गुरु के शक्ति संचार से कभी भी भक्ति नहीं होगी, इसको दिखलाने के लिए ये कहा गया। तो ये महाप्रभु के हृदयगत जितने भाव हैं उनकी जो स्वयं श्री चैतन्य मनोभीष्टम जिसको इन लोगों ने वर्णन किया वो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के अंदर में संचरित किया, इसको मान भी दिया जाए तो संचरित किया, और उन्होंने इन सब का विवेचन ग्रंथों में, पहले साधन किसको, पहले भक्ति तो ये बतलाया, इसका विवेचन बहुत लंबा हो जाएगा, अभी आरती का समय भी और इन लोगों को भी अधिक रुकना नहीं चाहता, तो मैं मुझे ये लालसा है कि और फिर इन लोगों को बुलाऊं जिससे आप लोग अधिक से अधिक भक्ति का विचार समझ सके, रूप गोस्वामी को, महाप्रभु जी को और महाप्रभु के परिकरों को आप लोग अच्छी तरह से समझ सके। मैं फिर अवसर आएगा मैं सब इन रसिक विद्वानों को, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के ये शीर्ष आज इस समय में वर्तमान में ये लोग हैं, इनको हम फिर से बुलाएंगे, हम लोग फिर से रसास्वादन इस सब का करेंगे। तो रूप गोस्वामी जी भक्ति का विवेचन दिया, अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इसमें अनुशीलन शब्द की कैसे सुंदर से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि ये ने व्याख्या की, नहीं की, अनुकूल रूप में अनुशीलन करना ही ये भक्ति है, किंतु उत्तमा नहीं है। उत्तमा कब होगी? जब दोनों गौण लक्षण उसमें संयुक्त हो गए, अन्याभिलाषिता शून्यम
ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। अन्नाभिलाषिता क्यों दिया, अन्नाभिलाष क्यों नहीं दिया, इस पर भी सुंदर विवेचन। भाई देखो, अन्नाभिलाष होना बड़ा भारी कठिन है, बहुत कठिन। तुम लोग भक्ति में बढ़ नहीं सकते, हम लोग बढ़ नहीं सकते। स्वाभाविक रूप में अन्नाभिलाष नहीं होना चाहिए। हठात विपत्ति में यदि हे कृष्ण रक्षा करो यह कह दिया, यह स्वभाव परिवर्तन हो गया है, इसलिए स्वाभाविक रूप नहीं, स्वभाव के बदलने पर ऐसी प्रार्थना हुई, इसलिए इसमें कोई हर्ज भक्ति में नहीं बिगड़ता। द्रौपदी जी ने कहा आप मेरी रक्षा करें, आंख खुलो करके पुकार, यह भक्ति का विघ्न नहीं है, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित रहने पर, स्वाभाविक स्थिति रूप में रहने पर यदि कोई अन्नाभिलाष हो तब तो वह गड़बड़, भक्ति नहीं होगी। किंतु स्वभाव के परिवर्तन अकस्मात यदि हो जाए ऐसा कोई भाव, तो वहां पर क्षम्य है। लोक संग्रह के लिए यदि कोई वैष्णव किसी तरह से कोई श्राद्ध कर देता है वो क्षम्य है, किंतु स्वाभाविक रूप में ये समझे जैसे इसका श्राद्ध नहीं करने से हमारी भक्ति नहीं होगी, या हमारा ये रास्ता बिगड़ जाएगा, मर्यादा हम में नहीं रख सके, तो ये भक्ति के लिए बाधक है, इसलिए कुछ छोड़ दिया गया। इसमें एक सुंदर विवेचन किया, शीर्ष धातु का अर्थ के ऊपर में बहुत सुंदर विवेचन किया। कायिक मानसिक और वाचिक, कायिक वाचिकी और मानसिक चेष्टाएं, इसके अतिरिक्त भाव की जितने भी है वो सब चेष्टाएं कृष्ण के लिए अखिल चेष्टापरायण होगा। उसमें अनुशीलन में भी वैष्णव के अनुगत